हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तविंद, दामोदर देश भक्तविंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत छठे स्कंद के 16वें अध्याय में चित्रकेतु नारद का सानिध्य शिक्षा दीक्षा और कृपा प्राप्त करके उनकी दिए हुए मंत्र के उच्चारण करने से विद्याधर अधिपति बन गए और भगवान की भगवान की का साक्षात्कार हुआ और तब भगवान का दर्शन हुआ और दर्शन होने के ऊपर उन्होंने साक्षात श्री बलराम जी की प्रार्थना की, संकर्षण नीलांबर। तो उसका 37वां श्लोक कल हमने पढ़ा था। क्षित्यादिभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दश गुणोत्तरैर अंडकोशः यत्र पतत्यनुकल्पः सहा अंड कोटि कोटि भिस्तद अनंतः। क्षति का मतलब पृथ्वी, आदि भी का मतलब और पंच तत्व, और ऐसे सात तत्वों की ब्रह्मांड की चारों ओर आवरण है। दश गुणोत्तरी अंडकोश, अंडकोश का मतलब ब्रह्मांड के कवरिंग, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है भगवान, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। तो इसमें हम प्रभुपाद जी का आज तात्पर्य पढ़ने जा रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, यस्यैक निवस्ति कालम अथवालंभ्य जीवन्ति लोम विलजा जगत अंडनाथा। भगवान सांस बाहर निकालते हैं, कई कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। जीवन्ति लोम विलज जगत अंड, और भगवान सांस वापस लेते हैं, सब ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं। जीवन तिलोम विलजा जगत अंडनाथा विष्णु महान स एह यस्य कला विशेषो। और इतने सारे ब्रह्मांड ऐसे कौन निकालता है और कौन वापस में अंदर ले लेता है? बोला महाविष्णु। वो महाविष्णु कौन है? यस्य कला विशेषो, भगवान की एक कला है, अंश का अंश है। तो भगवान कौन है? गोविंद हमादि पुरुषम तमाम भजामी। तो भगवान के सांस लेने से, अंदर लेने से सब ब्रह्मांड अंदर, बाहर लेने से ब्रह्मांड बाहर, ऐसा महाविष्णु भगवान गोविंद का एक कला है। प्रभुपाद के कला का मतलब है भगवान के एक विशेष विस्तार का विस्तार। अब प्रभुपाद जी थोड़ा सा संक्षेप में हमें जानकारी दे रहे हैं। पहले तो आदि पुरुष कृष्ण गोविंद है, उनसे प्रथम विस्तार एक्सपेंशन बलराम होता है, बलराम से महासंकर्षण होता है, और संकर्षण से नारायण होता है, और नारायण से फिर दूसरा संकर्षण होता है, वो वैकुंठ में होता है, और दूसरे संकर्षण से महाविष्णु होता है, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु का विस्तार है क्षीरोदक्षाय विष्णु, और जो हमारे हृदय में है परमात्मा। तो अब आप देखिए कि क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई, पहला संकर्षण और नारायण, फिर मूल संकर्षण, फिर महासंकर्षण, फिर बलराम जो मूल संकर्षण है, और फिर श्री कृष्ण गोविंद। ऐसे इसको कहते हैं अंश का अंश। अंश का अंश, आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इससे आपको एक अनुमान हो जाएगा कि अनंत किसको कहते हैं और एक क्षीरोदक्षायी विष्णु एक लोक का, एक ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, कितने विष्णु हैं, कोटि विष्णु कोटि ब्रह्मा कोटि शंकर, क्योंकि हर ब्रह्मांड में सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा है, पालन करने के लिए विष्णु है और संहार करने के लिए शिव है, तो इतने तो कोटि कोटि हैं, तो ये सब कहां से आए, इसलिए अनंत कहते हैं भगवान को। तो ये है भगवान की अनंत शक्ति कि वो अपने आप को इतने में विभाजित कर लेते हैं। इस श्लोक में एक ब्रह्मांड के सप्त भी दश गुण उतईर अंडकोश, इसका मतलब इस ब्रह्मांड का पहला धरती है तत्व जिससे घिरा हुआ है, फिर पानी है, फिर अग्नि है, फिर वायु है, फिर आकाश है, और उसके उपरांत पूरी भौतिक प्रकृति है, उसका पर्दा है, और उसके बाद अंत में जूठा अहंकार का, ये सब ये ही आठ जो हैं, ये सात, ये अष्टधा भिन्न प्रकृति है भगवान की, ये भी भगवान का ही विस्तार है, परंतु अलग उस विस्तार है, इसमें एक सारी भौतिक तत्व महत्त्व को छोड़े हैं तो बाकी ये छह जो हैं उन आठ में से है, तो मन और बुद्धि रह गया, तो ये सारा भौतिक प्रकृति है। जो पहला पर्दा है दूसरे से दस गुना ज्यादा मोटा होता है, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, आप मेरे विभूतियों को क्या आप सुनना चाहते हो, अथवा बहुने तेन किम ज्ञाते न अर्जुन, क्या अधिक जानने की जरूरत है, एक ब्रह्मांड का बताया है आपको, ऐसे कोटि ब्रह्मांड है। विष्टभ्यम अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश से ये पूरा जगत जो है इसका विस्तार हो रहा है, और ऐसे अनंत जगत है तो क्या सुनने की जरूरत है, बस आप भक्ति करो सुखी हो जाओ। अब प्रभुपाद जी सारांश बता रहे हैं कि जितना पूरे कोटि कोटि ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों लोक जो हैं, आकाश में इतने तारे देखते हैं, ये भी सब तो सारा कुछ ना कुछ इनका अपना भी अस्तित्व है, ये ग्रह मंडल है, ये तारा मंडल है, ऐसे और कितने और ब्रह्मांड है जिनके ब्रह्माओं के, हमारे ब्रह्मा के चार सर हैं, परंतु कुछ ब्रह्मांड इतने बड़े हैं कि वहां के ब्रह्मा के सौ सौ सर हैं। ऐसे ब्रह्मा जी मिलने आए थे भगवान से द्वारका में, तो भगवान ने कहा कौन से ब्रह्मा, ब्रह्मा को आश्चर्य लगा, बोला चतुर्मुख ब्रह्मा, तो भगवान मुस्कुराए, जब ब्रह्मा अंदर गए तो और किसी ने ब्रह्मा ने देखे तो हजारों ब्रह्मा बैठे, लाखों ब्रह्मा बैठे और अलग अलग सरों वाले बैठे, तो हर ब्रह्मांड के अलग ब्रह्मा है। इतना सारा जिसका वर्णन किया जा रहा है, ये सब मिला के एक चौथाई है भगवान की सारी, तीन चौथाई तो आध्यात्मिक जगत है, एक चौथाई में इतने कोटि कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड आते हैं, वन फोर्थ में, तो कितना बड़ा भगवान अनंत है, तीन चौथाई आध्यात्मिक जगत तो और बात है। अब आगे कशलेक पढ़ रहे हैं, विश्या त्रिशो नर पश्व य उपासते विभूतेर्न परम त्वाम तेषामाशीष ईश तद अनो विनश्यन्ति यथाराज कुलम। विश्य त्रिशु नर पशु, विश्य त्रिशु, ये त्रिशु का अर्थ है तृष्णा, ये त्रिशु का अर्थ तीन नहीं है, तृष्णा, विषयों की तृष्णा, तृष्णा का मतलब प्यास, विषयों की प्यास का मतलब इंद्रियों के विषयों के भोग की कामना, तड़प, प्यास। तो विषय त्रिशो, विश्व विषयों की तृष्णा, नर पशु मानव हो या पशु हो, यह उपासते जो भगवान की उपासना करे और करे विषयों की तृष्णा की, तो वो नर भी पशु है, वो तो पशु के स्तर का हो गया। विभूतिर न परम त्वाम तेषाम आशीष ईश, ईश आप उनको तो आशीष दे देंगे, परंतु वो ऐसी कोई विशेष बा विभूति उपासते, विभूति किसकी उपासना करते हैं, आपकी विभूति की उपासना, ये देवता भगवान की विभूतियां हैं। देवानाम इंद्रश्चास्मि, वसुनाम पावकश्चास्मि, ये सारे जितने देवता हैं ये भगवान की विभूतियां हैं। तो विषयों की तृष्णा के लिए पशु जैसा मानव, मानव जब पशु जैसा है, वो ऐसे भगवान की विभूति देवताओं की उपासना करता है। न परम त्वम, आपकी नहीं करते हैं भगवान, जो परम है, परम पुरुष है, परम ईश्वर है। तेषाम आशीष ईश, उनको वो देवता आशीष दे देते हैं, क्योंकि उनके पास भी कुछ तो ईश्वरता है। तद अनु विनश्यन्ति, वो सब नाश हो जाएगा। कब? जब देवता प्रलय होगी, देवता गया, देवता की आशीष गई। उदाहरण क्या देते हैं, यथाराज कुलम, किसी राजा ने किसी को कोई जमीन दे दी है आशीर्वाद में, राजा चला गया, कुल समाप्त, दूसरा राजा आया तो वो समाप्त हो गया उसकी आशीर्वाद। तो यहां इस श्लोक का अर्थ हुआ, हे भगवान कम बुद्धि वाले, इसका मतलब मानव है पर दो पांव वाले पशु इसको कहते हैं, द्विपाद पशु, जिनको भौतिक भोग की बहुत बड़ी तृष्णा है, इंद्रियों के विषयों के भोग की तृष्णा है, वो नाना प्रकार के देवताओं का पूजन करते हैं, वो मानव होते हुए भी पशु के स्तर पे हैं, क्योंकि आहार निद्रा भय मत्स्य उन्हें बस यही कर रहे हैं। इन्हीं पशु बुद्धि के कारण वो आपका भगवान पूजन नहीं करते, परंतु आपकी विभूतियां जो इस जगत के देवता है, आप तो महान महत्वपूर्ण है, वो तो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी पूजा करते। वो आपकी छोटी सी एक विभूति है। जब ये विश्व का प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मांड जब विनाश हो जाएगा, तो देवता और उनके आशीर्वाद भी उसके साथ समाप्त हो जाएंगे। जैसे राजकुल के समाप्त होने से उनके दिए हुए सारे वरदान आशीर्वाद सब समाप्त होते हैं, उनका राज ही समाप्त हो गया तो उनकी आशीर्वाद कहां चलेगी। हे भगवान, पशु तुल्य मानव जो विषय भोग का की तृष्णा से, प्यास से परेशान है, वो देवताओं की पूजा करता है, आपकी पूजा नहीं करता। देवता के विनाश के साथ उनके दी हुई आशीर्वाद ऐसे नाश हो जाती है, जैसे राजा ने अपने सेवकों को जो भी आशीर्वाद दिए, राजा गया तो वो सब समाप्त हो गया। पहले भगवान की महिमा, फिर भगवान के भक्तों की महिमा कही गई, परंतु भक्तों की महिमा कहने से पहले अब भक्तों की निंदा की जा रही है। जो भक्त नहीं है भगवान के, उसका इस श्लोक में निंदा की जा रही है। विभूति का मतलब है देवता, वो देवता की पूजा करते हैं, आपकी नहीं करते हैं। देवता का अपना ही शरीर छूट जाएगा प्रलय के समय, तो उनके दिए हुए आशीषां भी समाप्त हो जाएंगी। जब राज कुल ही समाप्त हो जाता है, तो उनकी सेवकों को दी हुई सारी आशीर्वाद है अपने आप समाप्त हो जाती है। प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता के 10:20 में लिखा है, कामयस्ते तेहर्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कामनाओं की तृष्णा से लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य देवताओं के मतलब आपकी नहीं करते, किसी और देवता की करते हैं। और यही श्लोक उसी भाव से उसी बात को कह रहा है। के वो हृत ज्ञाना है और ये नर पशु है, तो ये विशेष बुद्धि नहीं है। जो स्थाई देवता है ही नहीं, उनके वरदान तो अपने आप समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भक्त जो है ऐसे भौतिक लाभ के लिए देवताओं के से कुछ वरदान नहीं मांगते, वो तो केवल भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए ये श्लोक है, चलो भक्तों में को भी इच्छा भी हो कुछ, तो भी बजाय देवता के पास जाने के भगवान के पास जाए तो अच्छा है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। अकाम कोई कामना नहीं है, सर्व काम और सारी इच्छाएं वा अथवा मोक्ष काम, या तो मोक्ष चाहिए, तो पहला भक्त है, दूसरा कर्मी है, तीसरा ज्ञानी है। अकाम भक्त है, सर्व काम का कर्मी है, मोक्ष कामी ये ज्ञानी है। उदार धी ही, अगर वो उदार बुद्धि वाले हैं, समझदार हैं, तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, तो उन सबको तीव्रता से भक्ति योग में परम पुरुष भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो क्या है, उनकी इच्छा पूरी करते करते भगवान उनको अपनी आशीर्वाद और भक्ति दे देंगे। प्रभुपद लिखते हैं, ये जो सिद्ध पुरुष हैं मानवता में, उनका ये कर्तव्य है। परंतु मानव का केवल रूप धारण किए और काम पशु जैसे हैं, नर पशु, द्विपाद पशु, वो तो इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। कौन है द्विपाद पशु? प्रभुपाद, जो इस कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते, उसको नर पशु कहा गया। हरे कृष्णा, कौन है? हरि बोल। 39वां श्लोक पढ़ रहे हैं। काम धिया स्त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम्भ बीजानि ज्ञानात्मने अगुणमये गुणा गणतो अस्य द्वंद जालानि। काम धिया, जिसकी काम बुद्धि है, जिसकी कामनाओं वाली बुद्धि है, त्वयि भगवान आप में रचिता रचना करते हैं, न नहीं परम, ओ परम पुरुष भगवान, रोहन्ति आरोहन्ति, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। यथा करम्भ बीजानि, जिस प्रकार से करम्भ बीजानि, ये करम्भ बीजानि का मतलब है वो बीज जिनको पहले भुना गया है। ज्ञानात् मने अगुणमय, ज्ञान आत्मनि, आप जो परिपूर्ण ज्ञान का स्वरूप हैं, अगुणमय, जिनके ऊपर प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, गुण गणतः, प्रकृति के गुण जो है अस्य, उस व्यक्ति को द्वंद जालानि, द्वंद्वों के जाल में। तो इस श्लोक का भाव क्या है, हे परम पुरुष भगवान, अगर कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के पीछे पागल है, इंद्र तृप्ति का उसको भूत चढ़ा हुआ है, और जो उसके पास वैभव है, भौतिक ऐश्वर्य है, उससे आपका पूजन करता है, कैसे आपका पूजन करते हैं, करता है, जो आप ज्ञान स्वरूप हो, जो आप भौतिक प्रकृति के गुणों से परे और दिव्य हो, फिर भी वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। ये ऐसा समझना चाहिए कि जिन लोगों के पास धंधा है, कारोबार है, पैसा कमाते हैं, फिर वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, मंदिर बनाते हैं, भगवान के पुस्तक छापते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इसका अर्थ है भले कोई व्यक्ति भौतिक भोग के पीछे भाग रहा हो पागलपन की तरह, फिर भी जो उसके पास ऐश्वर्य है उनसे भगवान, आप सर्वज्ञ भगवान का, तीनों गुणों से परे दिव्य भगवान का अगर पूजन करता है तो फिर उसको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसे जैसे भुने हुआ बीज धरती में डालने से उससे कोई अंकुरित पौधा नहीं होता। क्योंकि आप दिव्य हैं, जो आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहता है वो भौतिक प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। अब ये चक्रवर्ती पाद कहते हैं, हे परम पुरुष भगवान, वो इच्छाएं जो भले भोग की हों परंतु आपकी ऊपर, आपकी ओर उन इच्छाओं को मोड़ दिया जाए, आप ऐसे आपकी तरफ मोड़ दिया जाए जो पूर्ण ज्ञान के स्वरूप हो और प्रकृति के गुणों से परे हो। इसका मतलब, हे दिव्य भगवान सच्चित आनंद, चित का मतलब हे ज्ञान स्वरूप भगवान, हे प्रकृति के गुणों से परे भगवान, कोई भौतिक भोगों के इच्छा वाला भी अगर अपने मन की वृत्ति आपकी ओर मोड़ दे तो फिर जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, जैसे भुना हुआ बीज धरती में डालने से अंकुरित नहीं होता। बोला फिर ये जन्म मृत्यु और ये द्वंद कैसे चलते हैं? ये प्रकृति के तीन गुणों से चलते हैं और आप गुणों से परे हैं और वो आपकी सेवा में लगा है, इसलिए प्रकृति के गुणों से बच जाएगा। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये श्लोक जो है ये भक्तों की महिमा का श्लोक है, परंतु एक न्याय के आधार पे, कैमुतिक न्याय। कैमुतिक न्याय का मतलब ये होता है, कैमुतिक न्याय का अर्थ ये कि जब ऐसे काम के भोगी भगवान की सेवा करके जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे तो जो भगवान की सेवा प्रेम पूर्वक करे तो उसका क्या कहना, इसको कैमुतिक न्याय कहते हैं। कोई राज का लोभी हो, मुझे राज मिले, ऐसे कोई धन का लोभी हो, परंतु वो सब आपको अर्पण कर दे तो फिर वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, जैसे भुने हुए बीज धरती में अंकुरित नहीं होते। क्योंकि फिर जो चीजें उसकी भोग की आपके अर्पण कर दी, आप तो हैं दिव्य, तो वो चीजें हो गई दिव्य। इसको हम ऐसे कहते हैं सामान्य हमारी भाषा में, गंगा जा बह रही है, पवित्र गंगा की धारा बह रही है, उसमें कोई एक नाला आके गिर भी पड़ा तो वो भी गंगा जल हो गया, अपने आप में पवित्र हो जाएगा। वो नाला गंगा में गिरने से ही पवित्र हो जाएगा, गंगा में अपवित्र नहीं हो सकता है। तो भगवान तो है परम पवित्र, जो अपने भावना है चाहे बहुत भोग की है वो भी भगवान की तरफ मोड़ दे तो भी वो मुक्त हो जाएगा। परंतु अगर उसकी इच्छाएं कहीं और, किसी और की पूजा में लगाए तो फिर तो वो बीज अंकुरित होगा, जन्म मृत्यु का चक्कर चलेगा, फिर वो भुना हुआ बीज नहीं रह जाएगा। आप तो है ज्ञान आत्मनि, आप तो है पूर्ण ज्ञान स्वरूप, आप में अगुण मन्य है, आप तो गुणों से परे हैं। जैसे यहां उदाहरण ये दिया है, जैसे कुएं में कोई चीज गिरे तो वो भी कुएं जैसी हो जाती है। पता नहीं किसका फोन बार बार आ रहा है। हरे कृष्ण, कौन है भाई? हरे कृष्णा, मेरी क्लास चल रहा है। कौन है? बार बार मैं आपको क्लास चलते हुए मैंने ऑन किया, आपने सुना नहीं। कौन बोल रहे हैं मेरा?
अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अगर हमको बताया था कि 7:30 बजे क्लास खत्म हो जाती है, इसलिए 7:30 बजे के बाद ही कॉल किया था। चलो कोई बात नहीं, आपकी क्या अभी तक होती है क्लास?
8 बजे होती है। कौन बोल रहे हैं?
अच्छा चलो ठीक है, 8 बजे बाद बात कर लेंगे, कोई बात।
तो वो ऐसा है कि गंगा में जैसे कोई नाला गिरे या कुएं में कोई रस वाली चीज गिरे, तो रस के कुएं में कोई चीज गिरे तो वो भी रस वाली हो जाएगी, और वो भौतिक इच्छाएं भी आप में प्रवेश करते हुए अपने आप आध्यात्मिक हो जाएंगी, तो फिर तो उनका जन्म मृत्यु नहीं चलेगा। और जो द्वंद्वों का जाल है, जो प्रकृति के गुणों से चलता है, वो समाप्त हो जाएगा। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के 4वें श्लोक में लिखा है, जन्म कर्म च मे देव्यम एवं योवेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म ऐति माम नैति माम एति सो अर्जुन। मेरे जन्म और मेरे लीलाओं को, मेरे कर्मों को जो दिव्य मानता है, तीनों गुणों से परे मानता है और जानता है, वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। प्रभुपाद कहते कोई अगर कृष्ण भावना के कार्यों में लग जाए ना केवल, और कृष्ण को समझने का प्रयास करे, तो जन्म मृत्यु से मुक्त तो हो ही जाएगा। जैसे भगवद गीता में यहां कहा गया है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। वो व्यक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है, भले कोई भौतिक इच्छाओं से भरा पड़ा हो, परंतु वो भगवान की सेवा के लिए आ गया है, तो फिर भगवान की कृपा से वो भी भौतिक धाम चला जाएगा। इसका भाव ये है वास्तविकता में कि कृष्ण भावना में आना, कृष्ण के चरणों में आकर्षण होना, कृष्ण के भक्तों का संग करना और भगवान के नाम का उच्चारण करना, ये इतने आप में शक्तिशाली है कि उसके जीवन की में काया पलट हो जाएगी और वो अपने आप भगवान का भक्त बन जाएगा और भगवान के धाम चला जाएगा। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर तो है नहीं, भगवान का नाम ही ले ले तो वो उसके कल्याण का कारण हो जाएगा। और भगवान के नाम में इतना रस आता है, जब वो रस आने लगेगा तो भौतिक इंद्रियों का रस तो फीका पड़ जाएगा। रसो वर्जम रसो अपि कौन्तेय परम दृष्टवान निवर्तते। एक बार भगवत प्रेम का आनंद आ गया तो फिर संसार का तो भोग तुच्छ है, उसको तो त्याग ही देगा। अब वो कृष्ण में रुचि रखेगा और भौतिक भोग से रुचि समाप्त हो जाएगी। किसी प्रकार से कृष्ण भावना के निकट आ जाए, भले भौतिक भोग के लिए आ जाए, भौतिक लाभ के लिए आ जाए, परंतु मुक्ति तो निश्चित हो ही जाएगी। अब एक श्लोक 7वें स्कंद भागवत का प्रभुपाद जी उद्धृत करते हैं, कामाद गोपिया, गोपियों ने तो प्रेम की कामना से भगवान को पा लिया। द्वेषाद, द्वेष करने से शिशुपाल ने मुक्ति प्राप्त कर ली। भयाद, भय से कंस ने। स्नेहाद स्नेह से यदुवंशियों ने, तो ये पूरा श्लोक है। वो भक्ति तो नहीं है लेकिन मुक्ति तो फिर भी मिल गई। तो द्वेष वाले और भय वाले भी अगर मुक्त हो जाते हैं तो जो कृष्ण की सेवा और प्रेम करना वाले हैं उनकी सफलता में कोई संदेह रह जाता है का? ये है कौमुतिक न्याय। जितम अजीत तदा भावता भवता, जितम अजीत तदा भवता, यथा भागवतम धर्मम अनवद्यम, निष्किंचना ये मुन्या आत्मा राम यम उपासते अपवर्गाय। जितम अजीत तदा भवता, अजीत आपको जीत लेते हैं, भवता आपको, हे भगवान अजीत आपको जीत लेते हैं। कौन जीत लेते हैं? आहा, भागवतम, जो भक्त भगवान का शरण लेते हैं, धर्माम, भागवत धर्म का जो शरण लेते हैं, यथा आहा भागवत धर्मम अनवद्यम, अनवद्यम मतलब जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, दोष रहित भक्त, निष्कंचना, उसका अपना किसी चीज को अपना नहीं मानते हैं, सब कुछ भगवान का है, निष्कंचन। कोई इस भौतिक जगत में भोग की ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, वो निष्कंचन है। ये मुनि है ऐसे मुनि, मननशील महात्मा ऋषि, आत्माराम, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, आत्माराम, वो अपनी आत्मा के रमण करते हैं, मतलब आत्मा के स्वरूप को जानते हैं कि भगवान के सेवक हैं। उपासते, अगर आपका सेवा करे, आपकी भक्ति करते हैं, अपवर्गाया, तो निश्चित रूप से भौतिक जगत के पवर्ग से, प फ ब भ म, परिश्रम से, भय से, फैन से, और वैरत से, और मृत्यु से बच जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। हे अजीत भगवान, जब आपने भागवत धर्म का उपदेश दिया, ऐसा भागवत धर्म जिसमें आपके चरण कमलों का शरण शुद्ध भाव से लिया जाता है, हे अजित भगवान, जब आपने भागवत धर्म का उपदेश किया, वो शुद्ध पवित्र भागवत धर्म है जिसमें कोई भी भौतिक कलमश नहीं है, और उस भागवत धर्म का लक्ष्य क्या है? आपके चरण कमलों की प्राप्ति। ये आपकी विजय है, आपका भागवत धर्म का उपदेश ही आपकी विजय है। जिन भक्तों को कोई भौतिक इच्छा नहीं है, जैसे कुमार, जो ज्ञान में परिपूर्ण है, आत्मा राम है, वो आपकी उपासना करते हैं भौतिक जगत से मुक्ति के लिए। दूसरे शब्दों में, वो भागवत धर्म का अनुशीलन करते हैं आपके चरण कमलों का शरण लेने के लिए। हे अजीत भगवान, जब आपने शुद्ध भक्ति का मार्ग बताया, जिसका ध्यान करके भक्त, जिसमें भक्त आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, और आपके प्रेम को प्राप्त करते हैं, ऐसे भक्त आपके द्वारा जीते जाते हैं। हे अजीत, आपके भागवत धर्म से आपने भक्तों को जीत लिया। पहला श्लोक था कि अजीत को जीत लेते हैं भक्त, परस्पर एक दूसरे को जीतते हैं, परंतु इस श्लोक कह रहा है कि आपके भागवत धर्म और भक्ति के मार्ग का महत्व इतना अधिक है कि आपकी भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि भौतिक इच्छाएं भी आपके शक्ति के सामने जन्म मृत्यु से मुक्त हो करा देती है, तो फिर आपकी भक्ति की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होगी। तो ये निष्काम भक्ति जो है, इसका मार्ग तो आपने ही दिया है। ये जो भागवत धर्म का मार्ग है, ये तो आपने ही दिया है, और इसके द्वारा आपने अपने भक्तों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, उनको अपने आपने उनको अपना बना दिया। और ऐसे भक्तों का वर्णन 34वें श्लोक में हुआ है, निष्काम, कोई इच्छा नहीं है। ये आपके द्वारा हुआ क्योंकि आप बड़े दयालु हैं, क्योंकि आप भक्तों के वश में होना चाहते हैं। आपको अच्छा लगता है जब कोई प्रेमी भक्त ही आपके ऊपर अपना स्नेह के साथ मेरा मान ले कि भगवान मेरे हैं। ये चैतन्य चरितमृत में लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मेरे को कहता है भगवान हो, महान हो, पूजा करता है, उससे मैं इतना वेद मंत्रों से प्रभावित नहीं होता जितना माँ मेरे को डांटे कान पकड़ के, या मेरा मित्र मेरे साथ खेलते हुए बराबरी करके, मेरे से जिद करके मेरे ऊपर शासन करे, या मेरे मुझसे प्रेम करने वाली प्रेमिकाएं मेरे ऊपर भर्षण करें, गुस्सा करें, उससे मैं बड़ा अप्रसन्न होता हूं। वेदों के मंत्रों के उच्चारण से मुझे इतना आनंद नहीं आता है जितने प्रेमी भक्तों के डांट डपट से मुझे सुख मिलता है। इसलिए कभी कभी आचार्य गण लिखते हैं कि मीठा खा खा के जब व्यक्ति कोई उब जाता है, तो फिर उसको कुछ नमकीन और तीखे खाने की इच्छा होती है। तो ऐसे पूजा के मंत्र सुन सुन के भगवान उकता जाते हैं, और प्रेमी भक्तियों के भक्षण और भर्षण से और उनके वश में करने की प्रक्रिया से वो बहुत बड़ा आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्णन सब गोपियों के घर में जाके मटकी फोड़ते, माखन चुराते, दही चुराते, दूध चुराते, खाते, सब शिकायत करती, यशोदा को परवाह ही नहीं। अपने घर का खाए या पराए घर का खाए, माखन खाएगा तो मोटा होएगा, सुखी रहेगा, कभी डांटा ही नहीं। भगवान ने कहा इतनी बड़ी उधम चोकड़ी मचाई हमने, पूरे ब्रज के घर घर में लूट लूट के दधी माखन खाया, ग्वाल बाल के संग में, परंतु एक दिन भी यशोदा ने गुस्सा नहीं किया। कुछ ऐसा करना चाहिए कि यशोदा क्रोध करे, तब जाके जमुना के किनारे मट्टी खाई, और ये समाचार मिलते यशोदा लाठी लेके आ गई, मट्टी खाई तो यशोदा क्रोध में भर के आई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मट्टी खाई तो यशोदा लाठी लेके आई, तो इससे पता क्या लगता है, इससे ऐसे भगवान ने क्यों किया। बोला भगवान ने ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे कृष्णा, हम बात कर रहे थे माखन चोरी की शिकायत के ऊपर यशोदा ने क्रोध नहीं किया तो भगवान ने माटी खाई, और यशोदा डांटने के लिए चली गई। भगवान ने कहा आज पता लगा कि मुझसे प्रेम करती है, तब मेरे को बहुत बड़ा आनंद आया। तो डांटने में भगवान सुख लेते हैं, ये बात कर रहे थे। तो यहां भगवान, आपने ये शिक्षा इसलिए दी है कि भक्त आपको अपने बस में कर ले, और इसी भक्त वश्यता आपकी विजय है। आप भक्तों के बस में हो जाएं, यही आपकी विजय है। इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। हे अजीत, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं देख रहा हूँ अब नेट गया है, क्या करूँ?
ठीक है भाई,
मेरे सामने पड़ा है, मैं देख रहा हूँ नेट चला गया है, लाइट भी आ गया है, कोई नहीं आ रहा है, कुछ डिस्टर्ब, क्या डिस्टर्बेंस है मालूम नहीं, मेरा अपना नेट है वो भी आ नहीं रहा है, क्या समस्या है? हरे कृष्णा, तो ये नेट का समस्या है जी, कुछ नहीं कर सकते। वो राउटर आएगा, राउटर में आएगा, क्या कहते हैं, इन्वर्टर नहीं, दूसरा यूएपीएस आने वाला है, तब ये समस्या कुछ कम होगी। हरे कृष्णा, हमारे कमल मल्होत्रा जी ने भेजने का व्यवस्था किया है, उनको लगता है कि ये दो चार मिनट क्यों जाते हैं ऐसे। सो बात कर रहे थे कि भगवान ने भागवत धर्म देकर अपने आप को भक्तों के बस में होने के जो जो मार्ग बताया है, यही भगवान की विजय है। भक्त रहते हैं बस में भगवान के, और भगवान बड़ा आनंद लेते हैं भक्तों के बस में होकर। हे अजीत भगवान, जब आपने निष्काम अनवद्यम, जब निष्काम धर्म का वर्णन किया, तो भक्त तो आपके ऋणी हो गए, आप भक्तों के द्वारा जीते गए। निष्काम भक्ति जो है उससे आप जीते जाते हो, और उस भक्ति का वर्णन भी आपने ही किया है, यह है आपका सद्गुण। इसलिए भक्त आपके ऋणी है कि आपने ऐसा मार्ग बता दिया। जो आरंभ से ही शुद्ध थे, निष्कंचन है, जैसे चार आत्माराम, जैसे ये हमारे चार कुमार हैं, और दूसरे जो मुनि है, जो मननशील है, अपने साधन करके सिद्धि को प्राप्त किया है, जो शुद्ध भक्तों का संग कर लेते हैं और अपने पुराने विचारों को त्याग देते हैं, और कुछ जीवन मुक्त भी है आत्माराम, जो उन्होंने तपस्वी करके और आपके धर्म का पालन किया है, तो ये तीन चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हो गया। निष्कंचन है, मुनि है, आत्माराम है, तीन हो गए। अथवा दो शब्द मुनि और आत्माराम, वो निष्कंचन के साथ उनके अंदर उनका भाव आ जाएगा। जिस मुनि ने निष्कंचनता से आपका ध्यान किया, मनन किया और सुख लिया और इस भागवत धर्म का पालन किया, अपवर्ग का यहां अर्थ है, यहां इस श्लोक में अपवर्ग का अर्थ है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं, जो लोगों के चार वर्गों का लक्ष्य होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनसे परे वो छोटे पड़ जाते हैं। चार धर्म अर्थ काम मोक्ष जो अपवर्ग है, वो जिसके सामने छोटा पड़ जाए वो है भागवत धर्म, और उससे मिलता है प्रेम, और प्रेम के सामने ये चारों छोटे हैं। अथवा अपवर्ग का अर्थ है, जैसे पांचवें स्कंद में भक्ति के लिए कहा गया है, यो असौ भगवती सर्वभूत आत्मने आत्मने अनुरिक्ते अनिलन अनिलयन्ने परमात्मनि वासुदेवे अनन्या निमित्त भक्ति योग लक्षणो नाना गति निमित्ता विद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण यदाहि महापुरुष पुरुष प्रसंग। ये 19वां श्लोक हमने पढ़ा है, ये तो प्रार्थनाओं के अंतर्गत आता है। मुक्ति जिसका स्वरूप है अनन्य भक्ति भगवान की, जो सर्व उत्तम गुणों से परिपूर्ण है, वो नहीं जिस ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, उसकी भक्ति वो अज्ञान की गांठ को खोल दे, नाश कर देती है, और वो भगवान के भक्तों के संग से प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है, श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा देते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानो शीलनम भक्तिरोत्तम। कोई भौतिक इच्छा न हो, ज्ञान और कर्म का पर्दा न हो, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करे, उसको उत्तम भक्ति कहते हैं। और इसी का भाव नारद पंचरात्र में है, सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्रे न विनिर्मलम ऋषिके न ऋषिकेश सेवनम भक्तिरोच्यते। सारी संसार की उपाधियों को त्याग कर दे, ये है पहले शब्द के बराबर, अन्य अभिलाषिता शून्यम तत्परत्वेन निर्मलम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच्यते, उसको भक्ति कही जाती है। इसको भागवत धर्म भी कहते हैं, जिसमें कोई भोग की भावना नहीं है, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सेवा करनी है। जैसे भगवत गीता में कहा गया, जैसे नारद पंचरात्र में, जैसे भागवत में कहा गया, इसको भागवत धर्म कहते हैं। ये शुद्ध भक्तों के लिए है, और ये भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे सुखदेव और नारद जी और इनकी परंपरा में जो निम्र भक्त है वो सिखाते हैं, भागवत धर्म को कोई सीख जाए तो एकदम भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा। जीव जो भगवान के अंश हैं, अटूट अंग हैं, जो इस भौतिक जगत में दुख भोग रहे हैं, भागवत धर्म से अपने आप को स्वरूप में स्थित करके सुखी हो जाएंगे। जब भगवान उनको निर्देश देते हैं भागवत धर्म का स्वयं, और अगर वो उसको पालन कर ले तो ये भगवान की विजय है। इसका अर्थ है भगवान ने उस बेचारे बद्ध जीवों का उद्धार कर लिया। तो भगवान की इच्छा ये है कि चाहे जीव मेरे अपने संतान है, मेरे पुत्र हैं, मैं इनका पिता हूँ, ये भटक रहे हैं, इनको वापस मेरे धाम में लाने के लिए मैं भागवत धर्म देता हूँ और ये इसका पालन करेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे, यही भगवान की विजय है। और अगर कोई भक्त भागवत धर्म के नियमों का पालन करता है, सिद्धांतों के ऊपर चलता है, तो वो भगवान का आज्ञाकारी हो जाता है। तो फिर वो भागवत धर्म के बिना कैसा जीवन होता है उसको भी जान जाता है, जिसमें भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो कृष्ण भावना में कोई आ जाता है तो वो पतित जीव भी हो तो समझना चाहिए कि भगवान उसके ऊपर कृपा किए, भगवान की विजय है। सवई पुंशाम परो धर्मो मतो यतो भक्ति अथोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता यस्यात्म सुप्रसीदते। ये है वास्तव में एक ही धर्म संसार में, एक ही धर्म है मानव के लिए संसार में, जो हमारे हृदय में भगवान की प्रेम भक्ति है, भगवान के लिए उसको जगा दे और उससे आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और ये है ना आत्म सुप्रसिद्ध, आत्म परम प्रसन्न हो जाए, और वो अहितुकी होनी चाहिए भक्ति और अप्रतिहता होनी चाहिए। इसका कल वर्णन किया था, अहितुकी का मतलब कोई हेतु नहीं और अप्रतिहता का मतलब कोई रुकावट नहीं। और इसलिए श्रीमद् भागवत जो है ये दिव्य अमल पुराण है, इसका शरण लेना चाहिए। यहां वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम।
दंडवत दंडवत।
मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि श्लोक संख्या 37 में बताया कि कृष्ण या गोविंद से बलराम जी आते हैं, बलराम जी से संकर्षण, फिर इनसे नारायण आते हैं, नारायण से द्वितीय संकर्षण आते हैं, उसके बाद तीनों महाविष्णु और गर्भदाई विष्णु और शिवदाई विष्णु उत्पन्न होते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये संकर्षण और ये द्वितीय संकर्षण में क्या अंतर है इसमें, मतलब पहले संकर्षण बलराम जी से आते हैं फिर उसके बाद जो तीनों विष्णु है जो
ये पहला मूल संकर्षण है वो गोलोक में, दूसरा संकर्षण है वो वैकुंठ में, ये स्थान का अंतर है। हाँ जी हाँ जी, हरे कृष्णा। चलो जी, श्रील प्रभुपाद की जय।